श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि परमेश्वर दुष्ट और धर्मी के बीच में तुलना करते हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे सामर्थ्य और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, उन्हें अपनी शांति और उन्हें अपना आनंद प्रदान करें ताकि प्रत्येक जीवन आपको धन्य कहने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि धार्मिक कृत्यों का परित्याग करने के लिए परमेश्वर का प्रतिवाद। इस भाग में परमेश्वर उनके दिखावे के धर्म का परित्याग करने के लिए अपने कारण को बताता है। तो आइए आप मेरे साथ यशाया 58 उसके 4 पद को निकाल लीजिए। यशाया 58 के 4 पद में लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। परमेश्वर बताता है कि वह उनके उपवास को मान्यता क्यों नहीं देता है। वे तो सोच रहे थे कि उनका उपवास उन्हें परमेश्वर की दृष्टि में महान बना रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यशाया 58 के 5 पद में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार से करते हो? क्या सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर ने उन्हें उपवास रखने की आज्ञा नहीं दी थी। उनकी आराधना पूर्ण रूपेण बाहरी दिखावा था, उसमें उनके मन की श्रद्धा का लेश मात्र भी प्रकाशन नहीं था। यही दशा आज की कलीसिया में भी है। मैं आपकी कलीसिया पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि बहुत सी कलीसियाएं सच में धर्मी कलीसियाएं हैं, परंतु कुल मिलाकर संगठित कलीसियाएं केवल धार्मिकता का स्वांग रचती हैं। यशाया 58 उसके 6 पद में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? यह एक महान बात है, यह व्यवहारिकता है। परमेश्वर के कहने का अर्थ है, यदि तू उपवास करे तो मैं बताता हूं कि तुझे क्या करना है। उपवास रखकर मुंह लटकाए घूमने की अपेक्षा पाप करना छोड़ दे, व्यर्थ की बातें करना छोड़ दे, ऐसा करना छोड़ दे जिससे तेरे मन की दुष्टता और बुराई प्रकट होती है। अपने आचरण से मुझ में अपने विश्वास को प्रकट कर, अपने व्यवहार में सत्य निष्ठा बनाए रख। अपने वचन में सत्यनिष्ठा निभा, तुझे टाट ओढ़े और राख में बैठने की आवश्यकता नहीं है, और इसके अपेक्षा मैं तेरे मन को शुद्ध देखना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मेरे विचार में परमेश्वर आज अनेक कलीसियाओं की आराधनाओं को रुकवा कर कहेगा, सुनो हम इसे समाप्त कर दें तो कैसा होगा? तुम इस दिखावे में क्यों पड़े हो? तुम मेरे निकट तो हो ही नहीं, तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर रहे हो। आराधना से निकल कर तुम अफवाहें उड़ाते हो, तुम्हारे मन में कड़वाहट भरी है, तुम्हारा आचरण नैतिकता का नहीं है, तुम्हारे जीवन में मर्यादा नहीं है। तुम सोचते हो कि धार्मिकता का स्वांग रचकर तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो। तुम यह जान लो कि तुम इस प्रकार मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। यही कारण है कि मैं तुम्हें त्याग देता हूं। यशाया 58 के 7 पद में आगे लिखा है, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। उन्होंने कंगालों और आवश्यकता में पड़े लोगों की पूरी तरह अनदेखा किया था। वे तो अपने परिजनों के प्रति भी प्रेम और दया से रहित थे। उनका धर्म तो ठंड में समाधि शिला के समान ठंडा था। उनका मन परमेश्वर से दूर था। मेरे मित्रों, यदि आपका मन परमेश्वर से लगा रहेगा तो मनुष्य के प्रति भी आपका मन दया से भर जाएगा। आप उनकी सहायता करना चाहेंगे और उनके लिए आशीष का कारण होंगे। आप अपने धार्मिक विचारों से, अर्थात धार्मिक विचारों में रूढ़िवादी और घृणा करने वाले नहीं होंगे। आज जितना भी आलोचना और प्रेम रहित वातावरण है, वह प्रभु यीशु के प्रयोजनों के लिए हानिकारक है। हमारे लिए यशाया का यह संदेश महान है। जी हाँ, परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट किया है कि वह उनकी ऐसी आराधनाओं से प्रसन्न नहीं था। वे केवल खाना पूर्ति करते थे। उनके लिए आराधना करना एक खेल था, दिखावा था। उसने कहा कि उनके लिए वह मन बहलाव का साधन होगा, परंतु यही उनके लिए एक दिन बोझ बन जाएगा, क्योंकि संसार के सामने यह दिखावा बनाए रखना थकाने वाला काम होगा। परमेश्वर ने उनसे कहा, साफ दिल से आओ, अपने जीवन से प्रकट करो कि तुम्हारे दिलों में सच्चाई है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि यदि आज आप दिखावे का जीवन जी रहे हैं तो एक दिन आपके लिए यह बोझ बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यशाया जनप्रिय क्यों नहीं था। मुक्त विचारक बाइबल के इस अंश को प्रायः अनदेखा करते हैं। वे पर्वतीय उपदेश को पढ़ते हैं और उसमें से कुछ ही पद चुनते हैं, जैसे धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यह एक महान पद है, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर के समक्ष अपने पापों का अंगीकार करें और अपने जीवन में प्रभु को वास करने दें। आज धर्म एक छलावरण है। ओह, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने की कैसी आवश्यकता है। उनके कल्याण के निमित्त परमेश्वर की चिंता हम देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा सत्य निष्ठा से उसके पास आए। यशाया 58 उसके 8 पद में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पाव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। धर्म का ऐसा दुरुपयोग करने वालों पर परमेश्वर अपनी आशीषों और महिमा का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। यह एक कारण है कि आज पवित्र मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति का बोध संसार को नहीं हो पाता है। संसार आराधना को देखते हुए आगे बढ़ जाता है। क्यों? उन्हें विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर वहां पर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे सही हैं। परमेश्वर यहां कहता है, तुम लोगों के जीवन ऐसे हैं कि मैं अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। हम में से कितने लोग परमेश्वर के मार्ग में बाधा हैं। कहा जाता है कि सिकंदर महान अपने एक विजय अभियान के बाद अपने गुरु अरस्तु, एक महान यूनानी दार्शनिक के पास गया। उस समय अरस्तु स्नान कर रहा था। सिकंदर ने उसे अपने विजय अभियान का ब्यौरा सुनाया और निवेदन किया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अरस्तु ने उसमें रुचि न दिखाते हुए अपना स्नान जारी रखा। सिकंदर ने फिर कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अरस्तु ने कहा, तू उजाला आने दे। हम भी शायद परमेश्वर से कह रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। परमेश्वर कहेगा, उजाला आने दे, हम उसकी ज्योति चमकने दें। यही एक महत्वपूर्ण बात है। यशाया 58:9 में लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनना चाहता है और सुनकर आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर उन्हें आशीष देना चाहता है, परंतु उनके मन आशीष ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। क्यों? क्या परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं देना चाहता? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि परमेश्वर हमें जो आशीषें देना चाहता है उनके लिए हमारे मन खुले हुए नहीं है। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। एक बार मेरा बड़ा बेटा बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब डॉक्टर ने एक रात सोचा और कहा कि वह मर जाएगा। मैं और मेरी पत्नी उसके पास बैठे थे। वह मूर्छित था, परंतु मुझे स्मरण है कि वह जब होश में आया तो वह पुकार उठा, माँ, और वह कहती है, मैं यहाँ हूँ मेरे बेटे। एक छोटे बच्चे के लिए वह कैसा सुखदायी पल होता है। आज भी यह जानना कैसा सुखद अनुभव है कि परमेश्वर हमारे पास है। वह कहता है कि मैं यहाँ हूँ। सच तो यह है कि परमेश्वर कहता है, अब तो यह तुम्हारे हाथ में है कि यदि तुम मेरे पुत्र के नाम में मांगो और तुम्हारा निवेदन मेरी इच्छा के विपरीत ना हो और तुम्हारा मन कपट रहित हो तो मैं तुरंत सुन लूंगा। यदि हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो समस्या उसके साथ नहीं, हमारे साथ है। यशाया 58:10 में लिखा है, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन मनुष्य को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। परमेश्वर उनसे एक विशेष काम करने को कहता है कि उन्हें आशीष दे। कहने को तो वह एक दर्जन बातें कह सकता था, परंतु उसने एक ही बात कही कि अपने धार्मिक कृत्यों में सत्य निष्ठा रखो। जो भी काम आप करते हैं धार्मिक तरीके से उस पर सत्यता को बनाए रखें। आगे कहता है यशाया 58:11 में, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। देखिए, परमेश्वर तो उन्हें आशीष देने के लिए हमेशा उतावला है, वो तैयार है, लेकिन हम उन आशीषों को लेने के लिए आज भी तैयार नहीं है। यशाया 58:13 में लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इसराइल को सप्त अर्थात विश्राम दिवस दिया था और निर्गमन की पुस्तक 31:17 में उसने कहा, वह मेरे और इसराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा। यदि आप इस अध्याय के 12-18 को पढ़ें तो अच्छा होगा। अब परमेश्वर इस विशेष आज्ञा के संबंध में कहता है, आज हमारे लिए यह कुछ भिन्न है। इब्रानियों के पत्र 4:1 में लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हमें उसके विश्राम में प्रवेश करने से वंचित नहीं रहना है। इब्रानियों की पत्री 4:10 में वह कहता है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अब प्रश्न यह है, क्या आपने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, अर्थात उद्धार के विश्राम में? क्या आप उस स्थिति में हैं कि पूर्ण रूप से प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं? उसने आपके लिए आवश्यक हर एक काम को, आपके उद्धार के लिए आवश्यक हर एक बात को पूरा किया है, और आप उसे परिपूरित कार्य में क्या विश्राम पाते हैं? या आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने उद्धार को प्राप्त करने या उसे ना खोने के लिए कुछ करना है? मेरे मित्रों, वह चाहता है कि हम पूरी तरह प्रभु यीशु में विश्वास करें। उसके विश्राम में प्रवेश करने का अर्थ हमारे लिए महान आशीषें ही नहीं, उसकी सेवा के लिए मार्ग का प्रवर्तन भी है। प्रेरित पौलुस को सेवा में लाने वाला यही उद्धार का विश्राम था। यशाया 58 उसके 14 पद में लिखा है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। यहां विस्तार सीमा बढ़ गई है और भविष्य का क्षेत्र हमारे लिए खुल गया है। वे परमेश्वर के आने वाली महिमा में विलंब करवा सकते हैं, परंतु आने वाली महिमा के प्रकाशन की परमेश्वर की योजना को नष्ट नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, यह आपके लिए और मेरे लिए अवसर है कि हम प्रभु के पास आएं और उस उद्धार का आनंद प्राप्त करें। यहां पर अध्याय 58 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 59 में आते हैं, जिसका विषय है इसराइल का अपराध, इसराइल को पाप स्वीकारन, इसराइल के मसीह का आगमन। मेरे प्रियो, यह अद्भुत अध्याय इसराइल के विरुद्ध परमेश्वर की शिकायत का उच्चारित वर्णन करता है। उनकी दयनीय दशा का कारण उनके पाप ही थे। धर्म उनके पाप पर पर्दा डालने का साधन है। परमेश्वर उनकी पुकार इसलिए नहीं सुन पा रहा था कि वह बहरा है, परंतु इसलिए कि उनके पाप बढ़ गए थे। आज हम में से अधिकांश जन सोचते हैं कि परमेश्वर सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर सुनता है, परंतु समस्या हमारे साथ है कि हम पाप पर पाप करते जाते हैं। उनके पापों के बारे में 32 बार कहा गया है और विभिन्न शब्दों द्वारा उनके पाप को व्यक्त भी किया गया है, जैसे अपराध, पाप लहू से अशुद्ध, झूठ, हठीले, कुटिल बातें, उत्पात, सांपिन के अंडे, मकड़ी के जाले, सपोला, अनर्थ, उपद्रव, बुराई, व्यर्थ युक्तियां, उजाड़, विनाश, अन्याय, टेढ़े पथ, अंधकार, अधर्म, शोषण, विद्रोह और झूठ गढ़ना और बोलना। मेरे मित्रों, उनके विरुद्ध 23 आरोप हैं। कैसा विचित्र परिदृश्य है। इसराइल के लिए राष्ट्रीय पाप स्वीकारन का दिन भी आएगा। उस दिन यरूशलेम में व्यापक विलाप होगा, जैसे मगिदोन की तराई में हरमगिदोन में हुआ था। जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 से 14 पद में हम पढ़ते हैं, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हरमगिदोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। यहां पर हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवार अलग अलग है और वहां रोना और दांत पीसना है। हम आगे देखेंगे इसराइल के अपराध। यशाया की पुस्तक 59 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। यशाया के युग में इसराइल की असुरक्षा का कारण यहोवा की भुजा की दुर्बलता नहीं था, जैसा हमने यशाया अध्याय 53 में देखा था। यहोवा का भुजबल कम नहीं हुआ था, न ही मनुष्य के साथ उसके संपर्क में कोई कमी थी। इसी प्रकार आज भी मनुष्य के मानसिक अवरोध या उसकी समस्याएं नहीं हैं, जो उसे परमेश्वर से अलग करते हैं, परंतु पाप उसे परमेश्वर से अलग करता है। यशाया 59 अध्याय के 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। ध्यान दीजिए, हमारे पापों के कारण ही वह हमारी नहीं सुनता है। अलेक्जेंडर मक्लॉरेन ने यशाया और यिर्मयाह पर टीका लिखी है, जिसमें से मैं एक अंश का संदर्भ देना चाहता हूं। यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर महान है और मैं तुच्छ हूं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर अनंत है और मैं क्षणभंगुर, इसलिए नहीं कि उसके सर्व ज्ञान और मेरे अज्ञान में अंतर है, उसकी शक्ति और मेरी दुर्बलता की मैं उससे अलग हूं। तुम्हारे पाप तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग करते हैं, न ही किसी मनुष्य ने ऐसा गुम्मट बनाया कि वहां तक पहुंच पाए। केवल एक ही साधन है जिसके द्वारा यह दूरी समाप्त होती है और जिसके द्वारा एकता की सब वास्तविक बाधाएं और मनुष्य की काल्पनिक बाधाएं ढा दी जाती है। मसीह आ गया और स्वर्ग उसमें झुक गया कि छू सके, और छू लेने के द्वारा इस पृथ्वी को आशीष दे, और मनुष्य और परमेश्वर फिर एक बार एक हो गए। मेरे प्रियो, इस संपूर्ण प्रथम भाग में परमेश्वर उनके पापों का वर्णन करता है। यह मानव जाति का एक निराशपूर्ण चित्रण है, आपका और मेरा भी। इसके बाद इसराइल का पाप स्वीकारण है, जो मुक्तिदाता के आगमन पर होगा, जब वह सियोन में कदम रखेगा। हम देखेंगे इसराइल का पाप स्वीकारण। यशाया 59 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोहते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। यहाँ सर्वनाम में परिवर्तन है, जिसका अर्थ है कि वक्ता बदल गया है। तुम्हारे और उनके के स्थान पर अब हम और हमारे का उपयोग किया जा रहा है। यह इसराइल का पाप स्वीकारण है जो वे करते हैं, अर्थात वे स्वीकार करते हैं कि वे अंधकार में हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उनका धर्म का दिखावा एक आडंबर था। आज अनेक विश्वासियों को इसकी आवश्यकता है। मैं एक दांतों के डॉक्टर और एक दलाल के साथ फुटबॉल खेलने में शामिल था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने प्रभु को कैसे ग्रहण किया। वे दोनों एक बड़े मुक्त विचारक कलीसिया के सदस्य थे। वे दोनों बहुत पैसे वाले थे। उनमें से एक ने मुझे बताया कि वह दिखावा करते करते थक गया था, अतः उसने प्रभु यीशु के सामने स्वीकार किया कि वह एक ढोंगी था और उसे वास्तविक जीवन की आवश्यकता थी। उसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ओह, आज इसकी कैसी घोर आवश्यकता है। यदि ऐसा हो तो हमारी कलीसियाओं में जागृति आ जाएगी। इसराइल का पाप स्वीकारण। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस प्रकार का दिखावा का जीवन जी रहे हैं। आपके पास समय है कि आप भी अपने पापों को मान ले और उद्धार का लाभ उठाएं। यशाया 59 अध्याय के 10 पद में कहता है, हम अंधों के समान दीवार टटोलते हैं, हाँ हम बिना आंख के लोगों के समान टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात के समान ठोकर खाते हैं, हृष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। देखिए वे कैसे अंधकार में हैं। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध न रखने वाले मनुष्य का यह कैसा चित्रण है। जब इसराइल भविष्य में यह अंगीकार करेगा, तब वे इस सब आरोपों को और अपने पापों को स्वीकार करेंगे। प्रत्येक पाप परमेश्वर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। मेरे साथ अपनी ही समस्याएं हैं, अतः मैं इसराइल के अपराधों को दोहराना नहीं चाहता। इसराइल में उनके मुक्तिदाता का आगमन भी हम देखते हैं। यहां ध्यान दे, सर्वनाम में फिर परिवर्तन हुआ है। मुक्तिदाता सियोन में आएगा। यशाया 59 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, प्रायः पूछा जाता है क्या संपूर्ण इसराइल देश का उद्धार होगा? जी नहीं। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 6 पद में पौलुस कहता है, जो इसराइल के वंश हैं वे सब इसराइली नहीं, जो बचाए जाएंगे वे शेष बचे इसराइली होंगे। कलिसिया में भी थोड़े ही हैं जो वास्तव में उद्धार प्राप्त हैं। एक दिन मुक्तिदाता इसराइल में आएगा और उस दिन व्यापक पाप स्वीकारन होगा। जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 पद में परमेश्वर कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यह वाचा बांधी है कि इसराइल में मुक्तिदाता आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यह प्रतिज्ञा टल जाए, क्योंकि यह परमेश्वर का उद्देश्य है। यह परमेश्वर के अपने समय में ही पूरा होगा, अर्थात यह अवश्य ही पूरा हो करके रहेगा। मेरे प्रियो, आज क्या आप उद्धार प्राप्त हैं? क्या आपको एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है? यदि हाँ, आप प्रभु यीशु के पास आएं, क्योंकि वही मुझे और आपको उद्धार दे सकता है, आपको मुक्ति दे सकता है, आपके पापों से आपको छुटकारा दे सकता है। आज मनुष्य अपने जीवन में दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात को भूल रहे हैं कि परमेश्वर सब बातों को जानता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज के इस वचन के प्रकाशन में आप अपने जीवन को झांक करके देखें कि आप कहां पर हैं। आज हमारे अध्ययन का समय यहां पर समाप्त होता है। प्रभु आपको सहायता करे कि आप एक सही निर्णय ले सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है, जा जरा मतवाले, रहमत वाले मन का दीप जला जीवन दीप जला।